कैसे की जाती है, उस पर ऐसा प्रकाश डाला आचार्य कुनकुन स्वामी ने, अद्भुत बात। और आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि सेवा करने वाले साधु, साधु की सेवा करने वाले साधु शुभ भावों में सर्वोच्च श्रेणी के शुभ भाव को प्राप्त होते हैं। बाकी कोई भी कार्य करे, स्तुति करे भगवान की साधु, तो भी शुभ भाव उतना उच्च कोटि का नहीं होगा जितना सेवा करते समय होगा। और छठे अपर गुण स्थान में प्रमत्त अवस्था में ध्यान भी करे, तब भी अगर शुभोपयोग चल रहा है तो भी वो शुभोपयोग उस श्रेणी का नहीं होगा जितना सेवा करते समय होता है। तो साधु की सेवा को सर्वोच्च शुभ भाव का है आचार्य कुनकुन स्वामी ने। सो भी सराग पधानों से, वो सराग साधुओं में प्रधान है। प्रधान किसको कहते हैं आप लोग? प्रमुख बोलते हैं उसको, समाज प्रमुख। तो वैसे ही शुभ भावों में प्रमुख जो हैं वो मुनि होते हैं जो साधुओं की सेवा करते हैं। जैसे नंदीक्षीण मुनि की कथा सुनी थी आपने, क्या थी वो कथा? कि उन्होंने वैसे ही दीक्षा ले ली थी जा करके, और दीक्षा लेकर के क्या किया उन्होंने, उनको आता नहीं था कुछ भी, लेकिन बस उन्होंने गुरुओं की सेवा की, भावलिंगी बन गए वो। और भावलिंगी बन करके उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया। आचार्य कहते हैं कि यदि वो अंत में सिर्फ एक थोड़ी सी भावों में कलुषता आ गई उनके कि मैंने इतनी तपस्या की है तो इसका फल मुझे ऐसा मिल जाए कि सब लोग मेरे वर्चस्व को स्वीकार कर लें, कोई मुझे नीचा ना देखे, यानी कोई मुझे छोटा ना समझे, ऐसी एक कलुषित भावना आ गई। वो मिथ्यात्व में नहीं आए थे, वो सिर्फ एक छोटा सा ये भाव आया था उनके मन में, और उसका परिणाम ये निकला। आचार्य जिनसेन स्वामी कहते हैं कि अगर इतना भाव उनको नहीं आता तो निश्चित रूप से उन्होंने जो साधना की थी उसका फल था तीर्थंकर पद, कोई दूसरा परिणाम हो ही नहीं सकता था। लेकिन बस उनके अंदर ये जो भाव आ गया उसके परिणाम स्वरूप वो तीर्थंकर तो नहीं बने, कामदेव बन गए। माने माइनस हो गया उतना। देखो सिद्धांत इतना निष्पक्ष है जैन सिद्धांत, कि यहाँ पर बड़े से बड़ा आदमी भी अगर कोई त्रुटि करता है तो वो त्रुटि माफ नहीं होती, और छोटे से छोटा आदमी भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका पुण्य उसको मिलता ही है। सुपरिणाम पुण्यम असुह पावन, बात करते करते निकल आई गाथा है। गाथा नंबर इस के अनुसार तो 89 है इस ग्रंथ के अनुसार, और मूल जो प्रवचन सार ग्रंथ में क्रम से अगर गाथा को देखा जाए तो फिर उसका नंबर कुछ और होना चाहिए। इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले अध्याय में गाथा हो गई, फिर दूसरे अध्याय में फिर एक नंबर से गाथा लिख दी है। अब ये पता नहीं क्यों किया इन्होंने ऐसे, भगवान जाने। गाथा का नंबर जो था वो ग्रंथ में, जैसे इसमें चल रही है कार्तिक अनुप्रेक्षा में, अभी कौन सा 7वां अध्याय चल रहा है, 7वां अध्याय चल रहा है और गाथा नंबर 90 चल रही है, जबकि 7वें अध्याय में सिर्फ 7 गाथा है। तो नंबर इन्होंने आगास वालों ने ऐसा कर दिया इसमें, तो इसलिए इसमें नंबर जो आ रहा है 89 नंबर की गाथा है। इसमें भी जयसेन स्वामी ने जो बात कही है उसमें ये लिखा आचार्य स्वामी, किंच मिथ्या दृष्टि सासादन मिश्र गुणस्थान त्रय तारतम्येन अशुभ परिणामो भवति। पहले क्या कहा था? उपयोगो भवति। यहां क्या कह रहे हैं? परिणामो भवति। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? इति पूर्वम भणितम आस्ति। ये पहले ही हम बता चुके हैं। तो अब वहां पर पहले जो बतलाया था वहां उपयोग शब्द था, यहां जो बतला रहे हैं यहां परिणाम शब्द है। तो शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ अलग नहीं है। लोग जबरदस्ती क्यों खींचातानी करते हैं हमारी समझ में नहीं आता। नहीं नहीं परिणाम अलग होता है, बोले भाव अलग होता है और उपयोग अलग ही चीज होती है, अंदर की चीज होती है उपयोग। अच्छा एकदम हंसी आती कई बार इन बातों को सुन करके, जबकि आचार्य क्या कह रहे हैं? पूर्वम भणितम अस्ति, पहले ये चीज हम बतला चुके हैं। लेकिन पहले जो बतलाया है उसको देखो, उस पेज को 9वीं गाथा की टीका देख लो, और यहां जो बतला रहे उसकी टीका देख लो। शब्द भेद है और अर्थ भेद नहीं है, तभी तो आचार्य कह रहे हैं कि पहले बतलाया है। और कहीं निकाल के बताओ कहां बतलाया है पहले? पूरे प्रवचन सार में कहीं नहीं मिलने वाले ये पंक्ति। अविरत देश विरत प्रमत्त संयत गुण संज्ञ गुणस्थानत्रय तारतम्येन शुभ परिणामश्च भणितः। अब यहाँ परिणाम फिर से कह रहे हैं, आगे के तीन गुणस्थानों में चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में शुभ परिणाम कहा गया है, और उसके बाद अप्रमत्तादि क्षीण कषाया कषायांत गुणस्थानेषु तारतम्येन शुद्धोपयोगोपि भणितः, शुद्धोपयोग भी कहा है। अब बताइए उपयोग और परिणाम शब्द में अंतर कहाँ रहा, एक हो गया ना अर्थ। बस इसी प्रकार यहाँ जो भाव शब्द है उसको भाव परिणाम और उपयोग तीनों एक अर्थवाची है, शब्दों की खींचातानी न की जाए तो फिर अर्थ एकदम अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो तीव्र कषाय रूप जो भाव होते हैं उसको स्वच्छ भाव कहते हैं, स्वच्छ यानी शुभ, ठीक है। और कौन से कषाय के भाव, मंद कषाय, तीव्र कषाय नहीं। आपके चेहरे देखे हमने, मंद कषाय रूप जो भाव होते हैं वो स्वच्छ या शुभ भाव है, और तीव्र कषाय वाले भाव जो हैं वो अस्वच्छ या अशुभ भाव हैं। अब शुभ और अशुभ भाव जिसके भीतर होते हैं उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है उसको आगे की गाथाओं में दर्शाएंगे। उसको आप जरूर ध्यान से सुनना और लिख सको तो लिख लेना कि कैसी प्रवृत्ति होती है उसको। आश्रवानुप्रेक्षा में स्वच्छ भाव और अस्वच्छ भाव दो प्रकार के भाव बताए, जिनमें से स्वच्छ भाव पुण्य का कारण है और अस्वच्छ भाव पाप का कारण है। अब इन भावों का स्वरूप क्या है, तो कह दिया कि मंद कषाय वाले भाव स्वच्छ होते हैं और तीव्र कषाय वाले भाव अस्वच्छ होते हैं। आगे और भी खुलासा कर रहे हैं, मंद कषाय के दृष्टांत और तीव्र कषाय के चिन्ह बता रहे हैं। सवत्थ विपीय वयणम दुवयणे दुज्जणे विखम करणम सव्वे सिंह गुण गहणम मंद कषायाण दिठंता सवत्थ विपीय वयणम, सबके प्रति प्रिय वचन बोलना। दुव्वैणे दुज्जणे भी कम करण, दुर्जन के दुर्वचन बोलने पर भी क्षमा कर देना। कैसे करना, ये सब पुरुषार्थ का खेल है। दुर्जन दुर्वचन बोलता है तो भी क्षमा कर देना। देखो क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि उससे कुछ नहीं बोलना, उससे कुछ नहीं बोला ये तो एक बात हुई, एक पहलू हुआ, लेकिन आप उस दिन अगर भोजन ठीक से नहीं करते तो क्षमा कहाँ होगी। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने खाना खाते समय प्रतिक्रिया तो कर दी, भोजन नहीं किया आपने ठीक से, तो ये क्षमा नहीं कहलाई। क्षमा करने का मतलब मन के अंदर कलुषता ही न रह जाने देना, एकदम मन शांत रहे, स्वच्छ रहे। समयसार ग्रंथ में आता है, सुहम असुहं च सद्दं नतं भणे सुनह मन्ति सोचेव। अच्छे बुरे जो शब्द होते हैं वो तुझे नहीं कहते कि मुझे सुन, तू खुद सुन करके राग द्वेष करके परेशान हो रहा है। शब्द तो नहीं कह रहे तेरे से, शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, गुण नहीं है, शब्द पर्याय है। तो सबके प्रति प्रिय वचन बोलना और दुर्जन के दुर्वचन सुनने पर भी क्षमा कर देना। और सव्वे सिंह गुण गहणम, कितनी सुंदर बात, सबके सभी के गुणों को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना स्वीकार करना, यानी इसमें ये गुण है, ये अगर आपको दिख रहा है तो फिर तीव्र कषाय तो नहीं मानी जाएगी, मंद कषाय के ही दृष्टांत है। तीव्र कषाय में सामने वाले में गुण नहीं दिखते, दोष दिखते। तो सबके प्रति प्रिय वचन, दुर्जन के दुर्वचन पर भी क्षमा, और सबके गुणों को स्वीकार करना मंद कषायों के दृष्टांत है। अथवा दुव्वैणे और दुज्जणे, इन दोनों को अलग अलग कर लो। दुर्वचन, कहीं भी किसी ने भी, अब मान लो दुर्जन नहीं है, कोई अपना ही आदमी है, उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कभी बोल जाते हैं लोग, कभी ऐसा हो जाता है जीवन में कि कोई अपने ही आदमी कोई ऐसी बात बोल जाए, है अच्छा आदमी लेकिन निकल गए मुंह से कोई शब्द, तो भी क्षमा कर देना, और दुर्जन के प्रति भी क्षमा भाव रखना। ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं, सभी के गुण ग्रहण करना मंद कषाय के दृष्टांत। अब तीव्र कषाय के दृष्टांत सुन लीजिए, ये सिर्फ सुनने के नहीं है, सुनना तो पहले ज़रूरी है, फिर बाद में कुछ अपने बारे में थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति के बारे में जांच पड़ताल भी कर लेना है। अपप्रशंसन करणम पूज्येषु विदोष गहनशीलतम वीरधरणं च सुइरं तिव्व कषायाण लिंगाणि। अपप्रशंसन करणम, प्राकृत भाषा ज्यादा कठिन नहीं है। अपप्रशंसन करणम मतलब अपनी प्रशंसा करना, मैं जब भी जाता हूँ तो आचार्य जी बहुत अच्छे से बात करते हैं मेरे से। ये क्या है, आचार्य जी बात करते हैं, आचार्य जी की बात आप मानते हैं क्या, फिर काहे के लिए अपनी तारीफ हाँकते हो। अपप्रशंसन करणम, ये तो एक दृष्टांत हो गया। ऐसे बहुत सारे अगणित स्थल आते हैं जीवन में जहाँ व्यक्ति अपनी प्रशंसा कर बैठता है। और फिर दूसरी बात, पूज्येषु विदोष ग्रहणशीलतम, पूज्य जनों में भी दोष ग्रहण करने की आदत होना, शीलत्व का अर्थ होता है आदत, वैसी प्रकृति है उसकी कि पूज्य जनों में भी दोष निकालेगा। वो बहुत अच्छे महाराज है, बहुत अच्छे है, लेकिन बस हो गया खेल खत्म। लेकिन बस यही तो, किंतु परंतु में तो संसार में भटक रहा है जी। बहुत अच्छा है धर्म, बिल्कुल रत्नत्रय धर्म से ही मुक्ति होगी, लेकिन लेकिन क्या, सबके बस की बात नहीं है। सबके क्यों बोल रहे हो भाई, मेरे बस की बोल दो ना, क्या तकलीफ है, मैं नहीं कर पाता। सबको क्यों लपेट रहे, ताकि मैं थोड़ा सा दब जाऊं, है ना, मैं एकदम पकड़ में ना आऊं अलग से। इसलिए कहता है कि सबके बस की बात नहीं है। तो पूज्य जनों में भी दोष ग्रहण करने की आदत होना, ये बहुत खतरनाक आदत है। तीव्र कषाय के दृष्टांत, और तीव्र कषाय का परिणाम जो होता है नरक और तिरेंच गति होते हैं, मंद कषाय का फल देव मनुष्य गति है, तीव्र कषाय का फल नरक तिरेंच गति है। तो अपनी प्रशंसा करना, पूज्य जनों में भी दोष ग्रहण करने की आदत होना, वीर धरणम च सुइरम, और सुचिर काल तक माने बहुत लंबे समय तक वैर को धारण करना। दो पांच दिन के लिए थोड़ा सा कलुषित हो गया मन, थोड़ा वैर भाव जैसा आया, लेकिन उसको निकाल दिया, छोड़ दिया, ये एक अलग बात है। बनती कोशिश तो वैर बनने ही नहीं देना चाहिए, क्रोध को, क्रोध आता है, सभी को आता है, लेकिन अगर उसको वैर न बनने दिया जाए तो भविष्य अच्छा रहता है, सुरक्षित रहता है। वैर बन गया तो वैर की गांठ खोलना बहुत मुश्किल है, जैसे बाल की गांठ खोलना कितना कठिन है, कपड़े की गांठ खोलना सरल है, रस्सी की गांठ खोलना सरल है, लेकिन बाल की गांठ, तो वैसी ग्रंथि हो जाती है अंदर वैर की। तो क्रोध आए तो आए, लेकिन वो वैर ना बने, इतना अपने को अपने अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये तीव्र कषाय के दृष्टांत हो गए। लिंगाणी मतलब चिन्नानी, ये चिन्ह हो गए तीव्र कषाय के, आप इन चिन्हों को देखकर अपनी पहचान कर सकते हैं कि मैं तीव्र कषाय वाला हूं या मंद कषाय वाला। मंद कषाय वाला क्या करता है, सबके प्रति प्रिय वचन बोलता है। अब प्रिय वचन का अर्थ चापलूसी नहीं है, वो चापलूसी पकड़ में आ जाती है। जब कोई अनावश्यक प्रशंसा करता है तो निश्चित रूप से वो आपको एकदम बेवकूफ समझता है, क्योंकि बेवकूफ व्यक्ति की ही अनावश्यक प्रशंसा की जा सकती है। जो समझदार है, जो आपको समझदार समझेगा, वो संभल कर करेगा प्रशंसा, ये पकड़ना ले मेरी चालाकी। और जो अनावश्यक रूप से प्रशंसा फ्लैटरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, चापलूसी चाटुकारिता, तो वहां पर पकड़ में आ जाता है कि ये किसी स्वार्थवश मेरी ऐसी आरती उतार रहा है, मेरी ऐसी स्तुति कर रहा है, जो चीज मेरे पास नहीं है। मैं स्पष्ट जानता हूं और ये भी जानता है कि नहीं है मेरे पास, तो उसकी तारीफ करने की क्या बात है। तो झूठी प्रशंसा शब्द भले मीठे लगे लेकिन पकड़ में आ जाती, वो तीव्र कषाय है। मंद कषाय के दृष्टांत नहीं है झूठी प्रशंसा का। सर्वत्रापि प्रिय वचन, सब जगह सबके प्रति मधुर वचन बोलना। दुव्वैणे, दुर्वचन किसी के बोलने पर भी खम करना, क्षमा कर देना। दुर्जने भी, दुर्जन के प्रति भी क्षमा धारण करना। ये तो डेल कार्नेगी ने लिखा है कि आपने कोई बहुत अच्छा काम किया तो भी किसी ने आपकी निंदा की तो आप अपनी तबीयत खराब मत करना, बोले। बहुत सुंदर बात लिखी उनने, बोले कि आप अपनी तबीयत खराब मत करना, अगर कोई तारीफ करे ना तो जरूर आश्चर्य करना, क्योंकि दुनिया दोष निकालने वालों से भरी हुई है, तारीफ करने वाले कम मिलते हैं, यानी सच्चे दिल से प्रशंसा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अगर कोई करे तुम्हारे अच्छे काम पर कोई प्रशंसा दिल से करे तो आश्चर्य करना, लेकिन कोई निंदा करे तो तबीयत खराब मत करना, क्योंकि निंदा करना तो सहज है और इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है और तकलीफ में आने की भी कोई बात नहीं है। उसने निंदा की तो कौन सा नया काम किया, वो तो बहुत पुराने जमाने से पद्धति चली आ रही है। और सव्वे सिंह गुण गहने, सबके गुणों को ग्रहण करना मंद कषाय के दृष्टांत है। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य जनों में भी दोष ग्रहण करने की आदत रखना, वैर धारण करना लंबे समय तक, ये सब तीव्र कषाय के चिन्ह है। अब क्या कहा था, तीव्र कषाय किसको कहा था, अस्वच्छ भाव को। अस्वच्छ भाव किसका कारण है, पाप का कारण है। और मंद कषाय किस भाव को कहा था, स्वच्छ भाव को। स्वच्छ भाव किसका कारण है, पुण्य का कारण है। अब स्वच्छ और अस्वच्छ को अपन दूसरे शब्दों में शुभ पुण्य से अशुभ पापस ऐसा कह लो। अब ये जो है, ये जैसे अभी कुछ ऐसी चर्चा आ रही है कि योग अलग चीज है और उपयोग अलग चीज है। यहाँ तक तो बात मान सकते हैं अपन कि योग जो है मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है उसका नाम है, और उपयोग, उपयोग यानी भाव है। तो ऐसी चर्चा है कि एक दृष्टांत कहीं कोई किसी ने दिया था कि माला फेरते हुए मनुष्य का उपयोग अशुभ हो सकता है, योग शुभ रहेगा, क्योंकि माला फेरना पांच पाप रूप प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन भाव अगर गलत हो तो फिर उपयोग अशुभ हो सकता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, अभी कैसे सिर हिल रहे थे आपके, जैसे कि बिल्कुल आपकी सहमति हो इसमें। एकदम जल्दी से किसी चीज को हाँ या ना नहीं भरना। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आया है कि प्रवृत्ति कोई भी हो, अगर अंदर भावना खोटी है तो उसको अशुभ योग कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है, अबक्ष का त्याग किया 6 महीने के लिए और रोज लाल आसन पर बैठकर सवेरे 3 बजे नमोकार मंत्र की जाप देता है। लक्ष्य क्या है? मेरी दुकान पड़ोसी से ज्यादा चलनी चाहिए। कौन सा योग है ये? सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार बता रहे हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बताना चाहते। ये तो जो लोग अपने मन से बताते हैं ना, उनकी बात आगम से मिलती है या नहीं, ये हम बता रहे हैं। ध्यान से सुन रहे हैं आप? माला फेर रहे आचार्य पूज्यपाद स्वामी उसको शुभ योग में नहीं गिन रहे। परिभाषा क्या दी शुभ योग की? शुभ परिणाम निर्वृत्तो योगः शुभः। शुभ परिणामों से, शुभ भावों से रचित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो शुभ योग है, और अशुभ परिणाम निर्वृत्तश्चाशुभः। सर्वार्थ सिद्धि के 6 अध्याय में ये जो सूत्र आता है ना, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, उसकी वृत्ति आप देख लीजिएगा। ये पंक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दी है कि अशुभ भावों से रचा गया जो भी योग है। अब देखिए, अगर आप बाह्य चेष्टा को ही शुभ और अशुभ कहने लग जाओ तो कितनी दिक्कत आएगी। हिंदुओं में एक पद्म पुराण नाम का ग्रंथ है, जैनों में पद्म चरितम उसका नाम है, उसको पद्म पुराण के नाम से आज लोग जानते हैं, और छपा भी है भारतीय ज्ञानपीठ से, पद्म पुराण नाम से छपा हुआ है। मूल जो संस्कृत प्रति निकली थी मुंबई से, उसका नाम पद्म चरितम था, माणिक चंद्र दिगंबर जैन ग्रंथमाला से छपी थी, शुद्ध संस्कृत में थी, नाथुराम प्रेमी के प्रयास से छपी थी। पंडित पन्नालाल जी ने उनसे कहा था कि क्या तुम संस्कृत किताबें छपा रहे हो, समाज का पैसा खर्च कर रहे हो, कौन पढ़ने वाला है? फिर पंडित जी ने जब अनुवाद किया तब फिर वहां नाथुराम प्रेमी ने खबर भेजी कि तुम पढ़ने वाले थे इसलिए छपवाई। बोले तुमने पढ़कर अनुवाद कब किया? जब वो प्रति छपी तब ना, तो इसलिए काम तो आई। बोले तो उसमें हिंदुओं के पद्म पुराण में आता है कि राम लक्ष्मण ऐसे पंपा सरोवर के पास से निकले जब, तो फिर तालाब के किनारे एक बगुले को एक पैर उठाकर ऊपर की तरफ ऐसे चौंच करके खड़े हुए देखा। लक्ष्मण ने ऐसे देखा और फिर एक तिरस्कार पूर्ण दृष्टि डालकर अपनी आंखें वहां से हटा ली। लेकिन राम ने ऐसे हाथ पकड़ा लक्ष्मण का कि देखो कैसा तपस्वी पक्षी है। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया बड़े भोले हैं आप, बोले ये महान पापी है, बोले ये पक्षी। तो फिर राम बोलते हैं कि कैसे? देखो ऊपर की तरफ इसने ध्यान लगाया है और एक पैर से खड़ा हुआ है, तपस्या कर रहा है। तो बोले नहीं भैया, अभी कुछ क्षणों का इंतजार करो, आपको इसका रहस्य स्वयं पता चल जाएगा। थोड़ी देर तक दोनों भाई खड़े रहते हैं और फिर उतने में क्या होता है कि एक मछली, बगुले पानी में खड़ा था, एक मछली ऐसे तालाब के किनारे ऐसे तैरती हुई आती है, तो बगुले की नज़र जो थी ऊपर नहीं थी, चौंच ऊपर थी, नज़र नीचे थी। पक्क से उसने मतलब चौंच मार करके मछली पकड़ी और फिर वो छटपटाती हुई मछली को ऐसे चौंच से दबाया और फिर अंदर निकल गया। तब लक्ष्मण बोले कि देखा भैया, ऐसे लोगों से अपने को सावधान रहना है। तो वो कौन सा योग है? राम ने उसके योग को देखकर उपयोग के बारे में क्या निर्णय किया? शुभ होगा। लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि ये न तो योग शुभ है और न उपयोग शुभ है। अब ये दृष्टांत समझ में आया? इसलिए जैसे एक दृष्टांत हमने सुना है कई बार, अपने संघों में भी ऐसी चर्चा रहती है, साधुओं के संघों में एक माताजी ने दृष्टांत दिया था कि रावण माला फेर रहे हैं, अचल मुद्रा में बैठकर अक्षमाला, अक्षमाला कहते हैं कमल गट्टी की माला को, वो छोटी आकृति का नील कमल के बीज भी होते हैं वो, और बड़े कमल गट्टे भी होते हैं, और अंगद वगैरह उसको परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि इसका ध्यान विचलित हो जाए, विद्या सिद्ध ना हो, क्योंकि विद्या बड़ी खतरनाक है। विभीषण बताते हैं कि बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो जाने के बाद रावण पर विजय प्राप्त करना किसी के बस की बात नहीं होगी, और वो 16 से 24 दिनों में सिद्ध होने वाली विद्या रावण की स्थिरता के कारण 8 दिन में सिद्ध होती है। वहाँ पर आचार्य रविशरण स्वामी कहते हैं कि इतनी स्थिरता अगर कोई मुनि में आ जाए तो घातिया कर्मों का नाश कर डाले गुरु। वैसी स्थिरता के साथ रावण ने वो काम किया। वज्र ऋषभ नाराज संगनन के धारी, प्रथम संस्थान से युक्त और सहज सुगंधित शरीर वाले जब बैठे वो, तो फिर उन्होंने दृष्टांत ये दिया कि वो जो माला फेर रहा है वो योग शुभ है, लेकिन उसका भाव ये है कि राम को परास्त करके सीता को पटरानी बनाओ, ये अशुभ भाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग शुभ हो सकता है और उपयोग अशुभ हो सकता है, पर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इससे भिन्न अभिमत आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दिया। आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर अंदर भाव खोटे हैं तो आप शरीर से कुछ भी करते रहो, वो केवल पापास्त्रव का कारण होगा। समझ में आया? नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर आप योग को शुभ मानेंगे, उपयोग को अशुभ मानेंगे, तो फिर ये सूत्र झूठा हो जाएगा, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, यानी भावना खराब होते हुए भी आपको पुण्य का बंध हो जाएगा। ये स्वीकार है आपको? या जो भी इस प्रकार से व्याख्यान कर रहे हैं उनसे पूछना कि क्या ये संभव है कि भाव अपने गलत हो और पुण्य का बंध हो जाए, क्योंकि सूत्र क्या कह रहा है, शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य। तो बताइए, अगर आप उस योग को शुभ मानते हैं तो शुभ योग पुण्य बंध का कारण है, भले भावना खोटी हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये सारी बातें जो है इसको थोड़ा स्वतंत्र दिमाग भी रखना जरूरी है, एकदम लकीर के फकीर नहीं बनना। किसी ने कुछ कह दिया अपन तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, नहीं, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। पता नहीं हमारी ऐसी आदत है कि हम जो खुद बोलते हैं उसके बारे में भी कई बार जांच करते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं ये कितना सही बोल रहे हैं, और अगर गलत बोल रहे हैं तो गलती को तो उठा के फेंक देना चाहिए बाहर और फिर भूल सुधार कर लेना चाहिए। इसी से अपना कल्याण हो सकता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मानना है कि अपन अपनी गलतियों को भी देखते रहें, सुधारते रहें, निकालते रहें। कई बार लोग कहते हैं कि कोई पाठ अगर मुंह में बैठ जाए तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हमने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अनादिकाल के मिथ्यात्व को जब तोड़ा जा सकता है तो फिर एक जन्म के पाठ को क्यों नहीं सुधारा जा सकता? और फिर अभी कुछ वर्षों में हमने कई पाठ सुधारे। ज्ञान का उच्चारण अभी हमने सन 98 में सीखा है। आत्मानुभव का अर्थ सीखने में हमें करीब 9 से 12 वर्ष का समय लगा था। और फिर अंचलिका में एक शब्द आता था अंचेमी, उसका शुद्ध पाठ करने के लिए हमें अभी 2 साल पहले सफलता प्राप्त हुई है। अच्छेमी पाठ है उसका, पहले अंचेमी बोलते थे, हर जगह अंचेमी लिखा रहता था, लेकिन धवला ग्रंथ में देखा तो वो अच्छेमी होना चाहिए पाठ, क्योंकि वीरसेन स्वामी गलत नहीं हो सकते, प्रिंटिंग मिस्टेक्स प्रेस वालों से हो सकती, लेकिन आचार्य कभी गलत प्ररूपण नहीं करते। अच्छणा पूजा वंदना नमनसणा, इसका वर्णन धवला की 8वीं पुस्तक में आया, वहां पर उन्होंने अच्छणा लिखा है, अंचणा नहीं लिखा। अगर अंचन शब्द होता तो अंचेमी बनता, लेकिन अच्छण अर्चना शब्द है तो अर्चना का अंचेमी बनेगा, अंचेमी नहीं बनेगा, अच्छेमी बनेगा। तो उसका सुधार अभी हमने किया था पूना में जाकर के 2003 में। तो इस प्रकार सुधार की प्रक्रिया अगर अपन चालू रखें और हमेशा अपने मन को ऐसा प्रोग्रामिंग दे दो, आप अंतर मन को कह दो कि जब भी मुझे कोई बात अपने अंदर गलत जानकारी में आएगी तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा और तुम्हें मेरा सहयोग देना पड़ेगा, तुम पकड़ के मत रखना। अपने को साफ स्वच्छ और शुद्ध वस्तु चाहिए। अब जैसे दूध है, अब दूध में कोई छोटा सा घास का एक सूखा तृण आ जाए, पी जाओगे क्या या उसको फिर से छान लोगे? कोई नुकसान नहीं, छानने में क्या तकलीफ हो रही है, फिर से छान लिया। ऐसा तो नहीं कि भाई एक बार मैंने छान लिया अब कितनी बार छानूंगा, नहीं, मोक्ष जाने के लिए बार बार छनाई की प्रक्रिया को जारी रखना पड़ता है। कई बार फिल्ट्रेशन होने के बाद जब एकदम क्लीन हो जाता है तब मुक्ति प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया ना, शुभ भाव को यहाँ पर स्वच्छ भाव का है, अशुभ भाव को अस्वच्छ भाव का है। तो योग और उपयोग, ये उपयोग जो है योग का कारण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और कार्य जो होता है वो कभी भी कारण के विरुद्ध नहीं होता। न्याय से चलो आप, न्याय क्या कहता है, कारण अच्छा होगा तो कार्य खराब नहीं होगा, कारण खराब होगा तो कार्य अच्छा नहीं होगा।